ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भूत्या ऊचुः साथ में चल जाएंगे। आधे श्लोक नौवां श्लोक तक है। अब आवृत्ति करेंगे चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक। न खलु गोपिका नन्दन भवान् अखिल देहिना अन्तरात्मदे लिखन साधितो विश्वगुप्तये सखौ दे समीक्ष भाषण भाषण्य गोपाल्या तिष्ठत सर्वानंद कंदो नंद नंदनो अहम स्त्री बद्ध पात की विश्वासघाती च जुष्माभिर निर्धारित तद इतो निश्चित्य रहसी क्वचित एवं स्थास्यामि जथा जन्म मध्य सकृदति न दर्शनम न प्राप्स्यथा इति तदीय भीषणोक्ति असंख्य अनुपत्ता तम प्रसाद स्तुवंति नीति। जब श्री गोपी जनों ने यह कहा कि आप हमारा वध कर रहे हैं अपने नेत्र से, पहले रक्षा करके क्या किए, क्यों जिलाए कि इस समय वध कर रहे हैं मन्मथ को प्रेरित करके, गोपियों को तत्काल भवांतर में ये आशंका हुई कि श्री कृष्ण हमारे कटुक्ति से कुपित हो गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियां मन में सोच रही हैं, कृष्ण कहे अयि शश्वत असमीक्ष भाषिण्य, इसमें से कौति ठाकुर कहते हरी सदा बिना विचार के बोलने वाली गोपाल लिया है, पशुओं का पालन करने वाले, तुम्हें उनको बुद्धि नहीं है, गोपाल्य गोपाल का स्त्रीलिंग है, गोपालियों तुम लोग सदा ऐसे ही बोला करती हो, कभी सोचती नहीं हो मैं सर्वानंद कंद हूँ, सबको आनंद देने वाला हूँ, सभी प्रकार के आनंद का निधान हूँ, नंद नंदन हूँ, मैं नंद नंदन हूँ, नंद महाराज का पुत्र हूँ, और मुझे तुम लोग स्त्री बद्ध पातकी और विश्वासघाती निर्धारित कर रही है। हम स्त्रियों का वध किए हैं, पाप किए हैं और विश्वासघाती हमको कह रही है। विश्वासघाती का अर्थ एक बार बचा करके, रक्षा करके, पाल पोष करके फिर वध कर रहे, इसका मतलब हमको तुम लोग कसाई मान रही हो, कसाई लोग पशुओं का पालन करते हैं कुछ काल और उसको उसका वध कर लेते हैं, मैं विश्वासघाती हूँ और मैं स्त्री वध का पातकी हूँ, तो ठहरो, मैं इस स्थान से ऐसे जगह पर चला जाऊंगा कि जिंदगी भर भेंट नहीं होगी हमसे। तब गोपियां इस बात की आशंका करके श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं, नहीं प्रियतम आप ऐसे महान हैं, ये हैं वो हैं, हमसे गलती हो गई आपके विषय में, कुछ भी कहा, केवल स्तुति के लिए। वास्तविकता ये नहीं कि गोपियों के मन में भावना है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए, ऐसा इनके मन में नहीं था, लेकिन कृष्ण को तुष्ट करके प्रकट करने के लिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म गृह देखन साथितो विश्व गोपये एवं प्रभावत्वात् इदम् अनुमीमहि इति स्तुत्यर्थम् आहु न खलु इति। हे सखे भवान खलु निश्चितं गोपिका नंदनः न भवति। हे सखे आप निश्चित थी केवल यशोदा नंदन नहीं है, यशोदा के पुत्र आप नहीं है, इसमें भाव केवल आप यशोदा के पुत्र मात्र नहीं है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है हम लोगों ने सुना है, आप वास्तव में बहुत महान पुरुष हैं, महान हैं, सब तरह एक प्रकार से करें आप साक्षात भगवान हैं, ऐसे हमने भांगरी मुनि के मुख से और परमहंसी जी के और गर्गाचार्य के वाक्यों को परंपरा से सुने हैं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। न खलु गोपी न खलु भगवान न खलु गोपिका नंदनो भवान, भवान आदर सूचक बोल रहे हैं, भवान में संस्कृत में आदर के अर्थ कहते हैं, आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हैं, अथवा आप गोपिका नंदन नहीं है, गोपिका श्री यशोदा नंदन है, पुत्र है, उनको आनंद देने वाले हैं। पुत्र आनंद देता है माता पिता को, इसीलिए माता पिता के बाद नंदन शब्द लगाया, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। तो आप निश्चित ही यशोदा के पुत्र नहीं है। तब क्या है, हम मान लीजिए भगवान पूछे न खलु गोपिका नंदनो भगवान, भगवान निश्चितम खलु का निश्चितम यशोदा नंदन न गोपिका नंदन न, तब क्या है अखिल देहिनाम अंतरात्म धृत। आप समस्त प्राणियों के बुद्धि के साक्षी, अंतरात्मा के द्रीप, द्रीप का अर्थ है दृष्टि नजर, द्रीप का अर्थ साक्षी, समस्त देहधारियों के बुद्धि के अंतरात्मा के आप साक्षी हैं, अर्थात आप परमात्मा है। यह बात सर्वत्र विदित है कि परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, सर्वस्व चाहन हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान में कोहन, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन की स्थिति, सर्वभूतानाम कोई जीव अपवाद नहीं है, चाहे वो जीव देवता हो या दैत्य हो, पशु पक्षी या मनुष्य कुछ भी हो, किसी शरीर में हो, पर सबके हृदय में श्री भगवान निवास करते हैं। यह परम सत्य विषय है। हमने सुना है और सुन करके आज प्रत्यक्ष अनुमान भी करते हैं कई आपकी लीलाओं को देख करके कि आप समस्त देहधारियों के हृदय में स्थित परमात्मा हैं, आप यशोदा पुत्र नहीं हैं। यह क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप यशोदा पुत्र होते दूसरे का दुख देखकर तुरंत द्रवित होने वाली यशोदा का गुण आप में आया होता, यशोदा दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाती, उसका पुत्र होने के कारण आप में ये दया गुण जरूर आया होता, लेकिन ये गुण बिल्कुल नहीं आया। निर्धारित करते हैं कि आप परमात्मा हैं, परमात्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबके हृदय में है और सबके दुख सुख को जानता है, फिर भी वो द्रवित नहीं होते, असंग भाव से परमात्मा सबके हृदय में रहते, जानता है सब कुछ, ये व्यक्ति रो रहा है, कलप रहा है, विलाप कर रहा है, लेकिन बस साक्षी मात्र देखता है। आपके इस निर्दयता गुण को देख करके हम नाम करते हैं, विश्वास हो गया कि आप यशोदा के पुत्र नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं, परमात्मा हैं सबके हृदय में। अब समझ में आ रहा है, ये जो ऋषि लोग भंगरी ऋषि आदि जो बात कहते हैं बिल्कुल ठीक है। परमात्मा अनादि काल से समस्त जीवों के हृदय में रह रहा है, लेकिन इतना रोने के बाद भी कभी प्रकट होकर के किसी भी व्यक्ति का आंसू नहीं पोछा है ना, परमात्मा किसी का आंसू नहीं पोछा। हम देखते हैं असप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी सकल जीव जग दीन दुख है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कौन बड़ा है इस पर जरा विचार कीजिए, भगवान सबके हृदय में है। और सुपर श्रीधर स्वामी भी यही श्लोक लिखे हैं, सब इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया होगा। वेद स्तुति में एक श्लोक की टीका में सुपर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप अनादि काल से समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन आपके द्वारा संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया है आज तक। धन्य है आपका नाम कि जिह्वा पर आते ही संसार वृक्ष को मूल से उखाड़ कर खत्म कर देते हैं। केवल टच करते हैं तो हम क्या कहें कि आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इसी बात का अनुवाद कर रहे हैं। ईश्वर तो सबके हृदय में है, अक्षत है और अविकारी है। ऐसे प्रभु के सबके हृदय में रहने पर भी सकल जीव जब दीन दुखारी सब दुखी, तो भगवान से कोई फायदा है नहीं जीवों को, साथ में रहे चाहे दूर रहे, है ना। असली लाभ जो जीवों को है वो भगवान के नाम से है, और वो भी हृदय में नहीं केवल जिह्वा के अग्रभाग पर टच करे तो जीव सुखी हो जाते हैं। आनंदानिवर्धनम प्रतिपदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की उदासीनता उनकी प्रियाओं के करुण रोदन के बाद भी वे प्रकट नहीं हो रहे हैं, सह रहे हैं, चाहे रोवो मरो कुछ भी करो, जैसे परमात्मा सह रहा है। और अनादि काल से प्रतिदिन क्षण सब समय है हृदय में, लेकिन कुछ भी करो रोवो या हर्षित हो उसको उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्यों हृदय में बैठे हैं। वास्तव में वह भी भगवान के करुणा है सबके हृदय में बैठे हैं, अगर वे हृदय में न हो तो जीव को कुछ भी याद नहीं आएगी और कुछ भूल नहीं पाएगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा। मत्तो स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान जीवों को सुलाने के लिए भी हृदय में स्थित, अपोहनम रात्रि के समय सब दुख या सुख भुलवा देते हैं, सो जाता है जी, उसको अपोहनम कहते हैं, कुछ भूल जाना। भूलना बहुत जरूरी है, संसार की बातें याद कर कर के आदमी दुखी रहता है। कुछ लोग तो रात में दवाई खाते हैं अपोहनम के लिए, विस्मृति के लिए, इसी तरह से नींद आ जाए। अगर वास्तव में भगवान नींद देते हैं प्रत्येक जीव को, ये अलग अलग ये कहीं भगवान उसके हृदय में विराजते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह स्वस्थित होकर के सबके हृदय में स्मृति संचार कर दें। यह भगवान की दया है, करुणा है कि वे जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते, सबके हृदय में रहते। परमात्मा के असंगता और उदासीनता आदि गुण को व्यक्त करने, जैसे परमात्मा भगवान उदासीन है सबके हृदय में, न उनके सुख से या दुख से उनको कुछ लेना है, कुछ भी विकार नहीं है, इसी तरह से हे सखे संबोधन करें कि हे सखे, इसका भी एक भाव है बाद में बताया जाएगा। हे सखे क्या कहें, आप भी सखा नहीं है, भूल से हम लोगों ने आपको अपना सखा माना, प्रिय माना, कि अंततः पता चल गया कि आप असंग परमात्मा हैं, हम लोगों से आप प्रेम कर नहीं पाएंगे, आपका जो वास्तविक गुण है वो प्रकट हो रहा है, कि इतना दुख विलाप के बाद भी आपके भले नहीं, आप परमात्मा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या परमात्मा किसी के नेत्र गोचर होता है? आज तक तो हुआ है किसी के नेत्र गोचर, हृदय नहीं रहता है। तो वो जो भगवान नेत्र गोचर होते हैं तो बैकुंठ से आते हैं, इनके कहने का आशय भगवान के कहने का आशय है। तो जो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, क्या कभी किसी के सामने प्रकट हुआ है, नेत्र गोचर हुआ है? तो यदि मैं परमात्मा हूं तो नेत्र गोचर कैसे हूं, किसी के आंखों के सामने कैसे हूं, इंद्रियों का विषय कैसे है? गोपियां कहते हैं कि विखन सार्थित, विखन सा श्री ब्रह्मणा अर्थित। हमने सुना है कि श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया आपसे आपके अवतार के लिए प्रकट होने के लिए, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप विश्व गुप्त इस विश्व के जीवों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। कहां? जदुकुल। विखन सार्थी तो विश्व गुप्त सख उदयवान सात्वता अनुकूल है। सात्वत जादवों में एक कुल विशेष है, अवांतर कुल, सात्वत, वृष्णी, दर्शाह, अंधक इत्यादि, ये सब पूर्वज हो गए हैं और उनसे वंश परंपराएं निकली हैं। तो सात्वत वंश में भगवान प्रकट हुए हैं, जादव विशेष वंश में। और श्री नंद महाराज भी जादव विशेष ही हैं, गोपालन में प्रवृत्त होने से इनको वैश्य माना जाता था, परंतु वास्तव में नंद महाराज यादव ही हैं, राजकुल जो परंपरा से आ रहे थे उसमें हैं। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने गोपालन का काम किया और भगवान इनके कार्य से इतने प्रसन्न हैं कि उस वंश में भगवान ने अवतार लिया। तो सातम कुले का थे वसुदेव जी के यहाँ भी और श्री नंद महाराज के यहाँ भी भगवान प्रकट हुए। आप प्रकट हुए हैं जादव कुल में, उदयवान उदित हुए हैं, जन्म नहीं लिए। परमात्मा जन्म नहीं लेता है, हृदय में सबके रहता है और वही उग गया है। जैसे उदयवान, जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य जन्म नहीं लेता है, या चंद्रमा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, उगते हैं। तो इस तरह से आप उदित हुए, आप गोपिका नंदन नहीं है। ये हम लोगों का साक्षात्कार है, हमारा अनुभव है अब तक का, आप नहीं है। इस तरह से पहले नौ का स्थापन कर, नौ शब्द लगाया गया, तो प्रत्येक पद के साथ नौ लगाना पड़ेगा, इसका यह भी अर्थ है। नय प्राण निर्देशात सर्व ही पद ही रन, सभी पदों के साथ इनका उतना ये भी भाव कर रहे हैं कि हे असखे, अभी भी मान में बोल रही हैं, हे प्रतिकूल इसमें अब भी लग सकता है। विश्व गुप्त ये सख असख उदयवान, चूंकि उधर ऊ है इसलिए विभक्ति लुप्त है। हाँ, सखे, हे सखे, पर यहाँ माननीय अर्थ में ये कर हे असखे, हे प्रतिकूल, आप गोपिका नंदन नहीं है, जसोदा नंदन नहीं है, आप समस्त देहधारियों के हृदय में परमात्मा नहीं है, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार नहीं लिए हैं। नहीं नहीं सब कुछ, आप अवतार नहीं लिए हैं, आप जसोदा नंदन नहीं है। जसोदा नंदन नहीं है, इसका अर्थ आचार्य गण करते हैं कि जसोदा जी अत्यंत स्नेहमयी हैं सभी के प्रति, चाहे ब्रजवासियों के प्रति, असामान्य जीवों के प्रति भी उनके हृदय में बहुत दया है, दयामयी है। पर ऐसी दयामयी जननी के गर्भ से जन्म लिए होते या आपन यदि जन्म लिए होते तो माँ का सारा सद्गुण परंपरा में आपको मिला होता। इस तरह से किसी का दुख देख करके और उस पर भी अबलाओं का दुख, जिनमें कोई बल नहीं होता और वो भी जंगल में भयावह वन में आकर के रो रही है और आपकी ही खोज कर रही है, आप जसोदा के पुत्र नहीं है, पता नहीं मथुरा में कहीं किसी के गर्भ से जन्म लिए हैं। एक प्रकार से सरस्वती इनके वाणी पर आ गए, जसोदा के पुत्र नहीं, अथवा केवल आप यशोदा के पुत्र ही नहीं है और के भी पुत्र हैं। या अभी और यशोदा जी परम कृपा आर्द्र चित्त वाली गायों की सेवा करने से सहज सहज सीधापन जीवन हो जाता है। गाय सबसे भली भाली जंतु है, उसके साथ रहने से व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल गाय जैसा सीधा साधा सरल निष्कपट होता है। लेकिन क्षत्रियाणी के गर्भ से जन्म लिया है वो तो युद्ध करने में बहुत कुशल होते हैं, मारना काटना यही काम है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते अर्जुन से कहते हैं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध निर्दृष्ट, बड़े सौभाग्यशाली क्षत्रिय इस प्रकार का युद्ध पाते हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मारो मारो लड़ो इस तरह, बहुत सौभाग्यशाली ऐसा अवसर पाते हैं सौभाग्यशाली क्षत्रिय। कहीं न कहीं तो जन्म लिए हैं लेकिन यशोदा के गर्भ से अब जन्म नहीं लिए, ये पहले निर्देश कर रहे हैं। न शब्द बोले न भगवान निश्चितम गोपिका नंदन न हो सकता है किसी क्षत्रियाणी के गर्भ से जन्म लिया हो, देवकी के गर्भ से जन्म लिया, ये नहीं कह रहे हैं लेकिन ऐसा ध्वनित हो रहा है। नहीं कहीं जन्म लिए ही नहीं है, आप साक्षात परमात्मा हैं और इसी कठोर स्वभाव के साथ आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए हैं तो विश्व की गुप्ति के लिए, विश्वस्थित समस्त जीवों की रक्षा के लिए, तो आप स्पेशल हम लोगों की क्यों रक्षा करेंगे? सबकी रक्षा समान रूप से कर देंगे। न शब्द पहले लगाया गया है तो इस पर सनातन गोस्वामी कहते हैं सभी पदों के साथ न लगाना पड़ेगा, कुपित होकर कहते हैं आप परमात्मा नहीं हैं, आप यशोदा नंदन नहीं हैं, ब्रह्मा जी से आपने प्रार्थना बिल्कुल नहीं किया है, आप अवतार नहीं लिए हैं, आप कुछ नहीं हैं। ये कोई वर्णन है लेकिन वास्तव में इस पद का जो सार्थक अर्थ होगा खूब अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा व्यक्त हो रही है गोपी जन के मुख से। भगवान का स्वरूप क्या, कृष्ण क्या है? कृष्ण केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, ये तो ठीक है कि यशोदा के गर्भ से भगवान जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, लेकिन वे हैं क्या? वास्तव में परम ईश्वर है श्री भगवान, समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, समस्त जगत के ईश्वर हैं, और इस विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति, इस विश्व की व्यवस्था के लिए सुचारू ढंग से चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया, इस विश्व के सबसे बड़े व्यवस्थापक श्री ब्रह्मा जी हैं, और श्री ब्रह्मा जी के ही अधीन भगवान शिव हैं और इंद्र ये वरुण जमराज आदि सभी उनके अधीन। एक प्रकार से इस विश्व के व्यवस्थापक और ईश्वर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान से ही उनका जन्म हुआ है। जब इस विश्व में बहुत से जीव दुखी थे और असुर उत्पात कर रहे थे, पृथ्वी की ऐसी अवस्था हो गई थी कि यह अब डूबे तब डूबे की हालत में थी, तो यह पृथ्वी गाय का रूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी के पास गई, बहुत रो रही थी। ये दशम स्कंध के प्रारंभ में ही कहा गया है, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी रो रही थी, बहुत खिन्न थी। ब्रह्मा जी के पास गई क्योंकि ब्रह्मा जी सुलभ हैं पृथ्वी के लिए, इस प्राकृतिक जगत में रहते हैं अपने लोक में, वहां पृथ्वी गई गौ रूप धारणी पृथ्वी, और ब्रह्मा जी से लगी रो रो करके अपना दुख सुनाने, बहुत दुख सुनाया। भागवत में यह वर्णन नहीं है कि दुख के कौन कौन शब्द पृथ्वी ने कहा, लेकिन अपना दुख सुनाया रो करके श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा तदुपधार जाता, तद उपधार जाता, ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से दुखनी पृथ्वी के दुख को सुने, उपधार दे। इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने कार्य हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन उस दुखिया पृथ्वी के दुख को ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह सुना, एक एक शब्द सुना। ब्रह्मा जी ने यह नहीं कह दिया वन मिनट में सब सुनाओ, हमको बहुत दूसरा काम है, बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि पृथ्वी समस्त जीवों की जननी है, जन्म देती है, पालन करती है, धरती है, इसी पर सब लोग जी रहे हैं। हम लोग भी प्रकट देखे हैं तो सारे जीव जंतु तो पृथ्वी से ही, पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी कहीं खा रहे हैं, ये सबको पालने वाली, सबकी धात्री, सबकी जननी है। सप्तैते मात्रा स्मृता है, सात माताएं हैं किसी व्यक्ति की, तो उसमें एक पृथ्वी है, और पृथ्वी विशेष रूप से सबकी माँ है, सभी पृथ्वी का ही उत्पादन खाते हैं, चाहे चावल खाएं या चना मटर दूध फल, सब कुछ पृथ्वी से आता है। ऐसी महिमा मई पृथ्वी पर कुछ दुख आ गया है, भूमि दुखी है, क्यों नहीं अधिकारी सुनेगा इस विश्व का, भूमि दुखनी है, अनंत कोटि जीवों का पालन करती है, इस पर दुख आ गया है, इसके दुख को सुनना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी एक आदर्श मैनेजर हैं विश्व के, भगवान के प्रतिनिधि, बड़े ध्यान से सुने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा तद उपधार जो, उपधार जो, उपधार जो का अर्थ बहुत निकटता से, बहुत सावधानी से सुने, और सुन करके उन्होंने तुरंत देवताओं को बुलाया। सबसे पहले भगवान को, भगवान शिव जी को बुलाया, इंद्र को बुलाया, वह फोन की जरूरत नहीं थी, ब्रह्मा जी का सोचना और उनको खबर हो जाना दोनों एक साथ होता था। यह तो कम से कम यंत्र की जरूरत पड़ती है, और फोन लगाए उसमें भी बैटरी नहीं है तो भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। ब्रह्मा जी तुरंत बुलाए समस्त देवताओं, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूत भेजे, ये किए वो किए, बहुत फाइन व्यवस्था है स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में सब कुछ, जिसकी कल्पना भी आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। उन्हें बुलाया तुरंत, एक सेकंड के भीतर शिव जी आ गए, भगवान इंद्र आए, और जितने भी लोकपाल हैं इस विश्व के व्यवस्थापक हैं सब आए, और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख को अपने मुख से बताया, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, क्या किया जाए। वास्तव में वे करने के लिए नहीं बताए, वे ब्रह्मा जी ने बताया कि आप सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर चलिए भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से हम लोग प्रार्थना करें कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार ले, और अवतार लेकर के इसका भारी बोझ दूर करे, सुखी करे, अपने चरण विन्यास से पृथ्वी को सुखी करे। भगवान तब पिघलेंगे जब हम लोग जा करके कीर्तन करेंगे। चलिए सब लोग, ब्रह्मा जी गए, शिव जी गए, और इंद्रादि सारे देवता गए, पृथ्वी भी गई। ये क्षीर समुद्र के अंदर नहीं जा सकते थे श्वेत द्वीप में भगवान के पास, तो क्षीर समुद्र के तट पर ही उपवास करके, कुछ भी खाना पीना नहीं, कोई पानी नहीं, अन्न नहीं, कुछ भी नहीं, वहां तो अन्न चलता भी नहीं है स्वर्ग में, केवल लिक्विड पीते, अमृत पीते हैं देवता लोग। उपवास किए और भगवान से प्रार्थना किए, विशेष रूप से श्री ब्रह्मा जी, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिल पुरुषम पुरुष सुक्त नल तपस्थे समय, उपतस्थ भगवान की आराधना किए, बिना खाए पिए जो जप किया जाता है, पाठ किया जाता है, उसका विशेष महत्व है। कई बार भागवत में किसी व्रत का वर्णन है तो कहा गया है कि प्रातःकालीन भोजन के पहले इसको करना चाहिए। भोजन करने से तमोगुण बढ़ जाते हैं। तो ब्रह्मादि देवता तो सदा के लिए भोजन छोड़ दी, जब तक भगवान कुछ कहेंगे नहीं तब तक के लिए भोजन और नींद दोनों छोड़ दी। ये सब प्रार्थना करने लगे भगवान से। और ब्रह्मा जी पुरुष का जप कर रहे थे, उसके साथ सारे देवता जप करने लगे। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए, समाधि अब लग गई। और समाधि में श्री भगवान ने इनसे कुछ कहा, ब्रह्मा जी मैं प्रकट होने वाला हूँ, पहले से ही मुझे पृथ्वी के दुख का पता है, पहले से इस विज्ञापन के पूर्व ही मुझे सब कुछ पता है कि पृथ्वी इस तरह से दुखी है, और मैं पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वसुदेव जी की भार्या देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा, और जन्म लेकर इस समस्त भूमि के भार को दूर करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आप देवताओं को आदेश दीजिए कि वे मेरी लीला में सहायक के रूप में जगदों में जन्म लें, और उनकी स्त्रियां मेरी प्रिया रुक्मिणी राधिका आदि की सेवा करने के लिए वे स्त्री के रूप में, गोपियों के रूप में या जादव स्त्रियों के रूप में जन्म लें। स्त्रियां भी अपने अंश से जन्म लें, देवता भी सब जन्म लें। भगवान सौभाग्य दे रहे थे देवताओं को अपने लीला में रहने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि श्री भगवान ने समाधि में हमसे ये कहा है, आप सब लोग जादव कुल में उतार लीजिए, आपकी स्त्रियां भी उतार लें, भगवान प्रकट होने वाले हैं वसुदेव जी के यहाँ। यह आश्वासन दे करके और पृथ्वी को समझा करके ब्रह्मा जी विदा कर दिए। ये प्रसंग ऐसा लग रहा है और स्वाभाविक है कि गोपों के यहाँ भी और जादवों के हैं या किसी भी व्यक्ति के हैं, ये सब कथाएं चलती थी। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान है ये बिल्कुल छिपी हुई बात नहीं है पृथ्वी पर। उसी समय से जब भगवान ने अवतार लेने से पहले ही ये बात कही तो इस बात का ही प्रचार हो गया विष्णु अवतार लेने वाले। यहाँ तक कौन शादी को ही पता था, कौन शादी ये सब सुने थे, सुनने के बाद भी देवकी और वसुदेव जी के विवाह के दिन प्रकट हो गया कि अब तो जल्दी ही जन्म लेने वाले हैं। पहले से कृष्ण के जन्म के पहले से पता है सबको कि ये भगवान है, भगवान आने वाले हैं। आजकल जो भगवान बनते हैं इनके जन्म के पहले कुछ पता नहीं रहता है कि कीड़ा पहले कहाँ था और अब भगवान होने वाला है, वो भी जन्म लेकर के कुछ बरस के बाद भगवान होगा और इसके बाद कब्र में चला जाएगा, चाहे चिता पर चला जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, ईश्वर हैं, इस बात का पहले से ही प्रचार था। और जब ये अवतार लिए, लीला करने लगे, कंस वध आदि की या गोवर्धन धारण आदि लीला, सब जगह जन जन में ये बात थी कि कृष्ण से भगवान हैं, कृष्ण साक्षात भगवान। यदि आज कोई व्यक्ति पर्वत उठाकर खड़ा हो जाए तो संसार के समस्त न्यूज पेपर्स में और वीडियो टेलीविजन में सब जगह वही बार बार दिखाया जाएगा कि नहीं, वही 7 दिन खड़ा हो जाए, थोड़ा सा केवल 2 मिनट खड़ा हो जाए तो उसी के चित्र से सारा संसार भर जाएगा। जब भगवान यहाँ थे और मान लीजिए जिस दिन गोवर्धन धारण उन्होंने किया और वो भी धारण किस स्थिति में किया कि स्वर्ग का राजा इंद्र खिलाफ कर रहा था, विरोध कर रहा था, मारने जा रहा था ब्रज को, उस समय धारण किए तो इंद्र के द्वारा ही सारी दुनिया में संवाद फैला दिया जाता है, सब जगह फैल गया क्षण भर में कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, देखो इस तरह से पर्वत उठा लेना 7 दिन 7 रात। और ये मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैं जो इन बातों को सुन करके कृष्ण का चिंतन करते हैं या उनकी इस लीला गान करते हैं। कृष्ण की भगवत्ता छिपी हुई नहीं आती। गोपियों के समाज में यदि भगवान कृष्ण की इस तरह की चर्चा हो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए हैं, ये श्री कृष्ण सामने जो तुम्हारे प्रियतम है, सखा है, सब कुछ है, ये साक्षात ईश्वर है और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए हैं और समस्त विश्व की रक्षा के लिए, विश्व गुप्त गुप्ती का अर्थ का रक्षण, पालन पोषण करना, रक्षा करना, तो विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, ये साक्षात ईश्वर है। श्री कृष्ण जहाँ जाते थे तो हम लोग डायरेक्ट बोलते थे जो अभिज्ञ थे, ये साक्षात ईश्वर है, ये साक्षात ईश्वर है। विश्व पितामह के पास बैठे हैं ऋषि लोग तो सीधा कहते हैं ये कृष्ण साक्षात विष्णु है, साक्षात भगवान। राजसीय सभा में सब लोग बात कर रहे थे ये साक्षात ईश्वर है, देखो इनका तेज, इनका सौंदर्य और इनका प्रभाव, सब कुछ। कितना बड़ा भाग्य था उस समय मनुष्यों का जो भगवान के सामने देख रहे थे, सामने बैठते थे और बातचीत करते थे और अनेक स्नेह के संबंधों में बंधे थे। कुछ लोग जैसे पांडव, पांडव स्नेह के संबंध में बंधे थे, कुछ मनुष्य भगवान के साथ वैवाहिक संबंध में बंधे थे, भगवान के कुछ साले थे, बहनोई थे, ससुर थे, डायरेक्ट देहगत संबंध थे भगवान के। तो वे उस संबंध में बंध करके कृष्ण के पास आते थे, कृष्ण उनके पास जाते थे। सर्वत्र इस बात का प्रचार है कि कृष्ण भगवान है। अगर गोपियां ये कहें कि हे प्रियतम, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। भले गोपियों की दृष्टि में यह केवल स्तुति मात्र है, वो तो जानती हैं कि कृष्ण कुछ भी हो पर हमारे प्रिय हैं, हमारे प्रियतम हैं। हम कोई चरण पर गिर करके मनाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं, हमको इतना मान देते हैं, इस यही भाव उनका नित्य सिद्ध भाव है। और बाकी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य आदि सुनती है, उन्हें प्रिय लगता है, ऐश्वर्य की बात सुनते हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण ये किए, जैसे कृष्ण मथुरा में चले गए, कंस का वध किए, अनेक राजाओं से भगवान का परिचय बढ़ा, क्षत्रियों से। गोपियां इस बात को सुनकर बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी, हमारे प्रियतम को संसार में ये सफलता मिल रही है। ये सुनती थी कि कृष्ण ईश्वर हैं, तो इन बातों का मनन नहीं करते, वो बहुत विचार नहीं करते। लेकिन जब ये सुनती थी कि हमारे प्रियतम कंस का वध कर दिए और बहुत सम्मान उनका हो रहा है, उग्रसेन महाराज इनको राजा की तरह मानते हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी, ये स्वाभाविक है। गोपियां से विरह के समय भगवान कृष्ण की स्तुति में अगर इनके गुणों को कह रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक। हे प्रियतम, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, आप समस्त देहधारियों के भीतर स्थित परमात्मा है, विश्व की रक्षा के लिए श्री ब्रह्मा के द्वारा आप प्रार्थित हैं, उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना से आप सात्वत कुल में उदयवान प्रकट हुए हैं, इसीलिए आप हमारे दुख को दूर करने में समर्थ हैं, हमारी प्रार्थना को पूरा करने में आप समर्थ हैं। इसका एक ये भाव है कि आप साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है, हम बहुत सी गोपियां हैं पर आप सबके मनोरथ को पूरा कर सकते हैं, सभी जीवों की रक्षा के लिए जब आप अवतार लिए हैं तो फिर ब्रज में इन 2-4 हजार गोपियों का रक्षण करना, और वो भी रक्षण आपके द्वारा इतना ही है कि आप दर्शन दीजिए, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी मांग नहीं कि हम आपसे बहुत बहुत मांग करते हैं, हमको ये दीजिए वो दीजिए, आप केवल हमारे दृष्टि के सामने हो जाइए, हम आपका हंसता हुआ मुख देख करके और सुखी हो जाएंगे। तो जब आपका ये कार्य ही है समस्त विश्व की रक्षा करना, पालन पोषण करना, आप इस विषय में परम प्रवीण हैं, समर्थ हैं, इसीलिए तो श्री ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना किया। संपूर्ण विश्व के दुख को मिटाने में केवल कृष्ण समर्थ है। आपने सुना कि सारा देव मंडल एक जगह जुटा है, कैसे विश्व सुखी होगा, कैसे सुखी होगा। यह हुआ कि जो सुखी करने में समर्थ है उसको पुकारा जाए। सबको विदित है कि भगवान के अलावा कोई सुखी नहीं कर सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का मंगल हो। सारे विश्व का मंगल तो भगवान का नाम कर सकता है। भगवान के नाम कीर्तन से सारे विश्व का मंगल होता है, उनके स्मरण से, भजन से। तो इस प्रकार है प्रियतम, आप समर्थ हैं सबके दुख को मिटाने में, आप कृपा करके दर्शन दीजिए। वैसे प्रारंभ में ही कहा गया कि गोपियों के वाक्य के अर्थ को श्याम सुंदर जानते हैं, जो दूसरा कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है जानने में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भले कोई समझ जाए, लेकिन अपने आप गोपियों के वाक्यों का वास्तविक अर्थ तो श्री भगवान जानते। सनातन गोस्वामी का जी अर्थ करते हैं असखे, अकुरह करके, असखे हे प्रतिकूल, हे दुख। और सखा वो है जो सुख दे। आप तो जब से आपसे संबंध हुआ तब से केवल दुख ही दे रहे। पहले अपने आप से देख करके हमारा वध कर दिए। दैर जोग से हम जी रही हैं या वे कैसे जी रही है क्या कहे, लेकिन आपने तो हमारा वध कर ही दिया आंख से। मतलब आप अपना सौंदर्य दिखा करके, बांसुरी सुना करके, अपनी चाल से, मुस्कान से, जैसे तैसे हमारे चित्त को खींच ले। चित्तम सुखे न भवता कृतम गृहेशु जन निर्विशति गृहेशु। गोपियां कहते हैं कि हमारा चित्त तो पहले लगता था घर गृहस्थी में, लेकिन आप अपने सर्व सुंदर इस स्वरूप को दिखाकर मेरे चित्त का आकर्षण कर लिए सब ओर से। विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल से गंडस्थलाधर शुभम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य वक्ष श्रियक रमणम च भवानंद। हम आपके अलकों से आवृत श्रीमुख को देखकर और आपके सुंदर नेत्र को देखकर, आपके मुस्कान को देखकर के, आपके विस्तृत वक्षस्थल को देखकर और आपकी अभय देने वाली भुजदंडों को, बाहों को देख करके आपने अनुरक्त हो गई, आपकी दासी बन गई। इस प्रकार गोपियों का जो भगवान के साथ संबंध है बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक। तो भगवान श्री कृष्ण एक है पर उनमें रस वैचित्र्य अनेक है। कोई भी जीव अपने भावों के अनुसार ही भगवान में लगता है। जैसा जिसका भाव है उस भाव से भगवान को पाता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। जैसे कंस के रंगशाला में श्री कृष्ण प्रवेश किए श्री बलराम जी के साथ, तो है वास्तव में ही कहीं, लेकिन जैसे जैसे भाव था कृष्ण के प्रति जिसका, वो लोग ऐसे ही देख रहे थे। नौ प्रकार के भाव वाले लोग बैठे थे, स्त्री और पुरुष, और अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण उनको दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले मल्ला नाम अश्लील निर्णाम निर्वर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। जब पहलवानों ने देखा, वास्तव में वहां पहलवानों का ही दंगल होने वाला था, कुश्ती होने वाली थी, और प्लान ये था कि कृष्ण बलराम को मल्ल क्रीड़ा के बहाने मार देना, जैसे मर्म स्थान में घुसा मार देना है, जैसे तैसे मर्म जनता न समझे। लेकिन वो रंगशाला का निर्माण और उसका उद्देश्य यही था, इसी के लिए किया गया था कृष्ण बलराम को मारना। और ठीक कंस के योजना के अनुसार समय पर बिल्कुल कृष्ण बलराम पहुंच गए। लेकिन भगवान चूंकि लीला पुरुषोत्तम है तो आते आते हाथी को मार करके आए, और हाथी का दांत दोनों, एक एक दांत दोनों भाई ले लिए थे। लक्ष्मी काशे थे, शहर में जैसे लोग सभ्य लोग वस्त्र पहनते हैं ऐसे नहीं पहने थे। हाथी को जब मारना था तो भगवान श्री कृष्ण अपने परिकर बांधे, कमर में धोती को बांधे और लक्ष्मी काश लिए, हाथी को मारे, दांत उखाड़े, एक दांत दे दिए बलराम जी को और एक दांत वो लेकर के चले गए। टप टप खून टपक रहा था, हाथी दांत में भी बह रहा था, बहा था खून और किसी के देह पर भी था। इस तरह से सभा में प्रवेश करना विढंगा प्रवेश था। सभा में सभ्य बन करके जाना चाहिए, सभ्य का होता है सभा में बैठने लायक सभ्य। इस तरह से हार टांग करके जाना सभा में, कि कोई सभा में जाने लायक स्थिति नहीं थी, हार को उधर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ये दिखा रहे थे कि हाथी दांत से हम काम लेंगे, ये महंगा चीज है, हम लेकर के चलेंगे। जो मोटा मोटा हाथी का दांत और दोनों भाई लेकर के चलेंगे। सबसे पहले पहलवानों की दृष्टि पड़ी दोनों भाई पर, मल्ला नाम असनी, उनको पहलवानों को कृष्ण और बलराम किस रूप में दिखाई दे रहे हैं कि मूर्तिमान वज्र आ रहे, असल बहुत कठोर शरीर वाले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले दोनों आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, वास्तविक बात यह थी कि परम सुंदर सुकुमार किशोर अवस्था के दोनों बच्चे, किशोर में भी पूरा पूरा नहीं आए थे, ये तो 11 साल के थे और उस समय प्रवेश कर रहे थे। ये लोग डर गए, बहुत भय लगा उनको, पहलवानों को, चारों मुष्टिक के सौ तोशल आदि पहलवान थे, बहुत कठोर लगे। मल्ला नाम असली निर्णाम नरवरव, और सामान्य जो मनुष्य थे जदवंशी वहीं बैठे हुए और भी लोग, उन्होंने देखा सबसे सुंदर मनुष्य नरवरव, श्रेष्ठ मनुष्य, शरीर की बनावट के अनुसार और हाव भाव चाल भाव, और हाथी दांत को देख करके भी उनमें उनकी कोई जुगुप्सा नहीं हुई, घृणा बुद्धि नहीं हुई, बहुत सुंदर नरवरव। नरवरव का अर्थ मनुष्य में श्रेष्ठ, बहुत सुंदर लग रहा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियों को दोनों भाई ऐसा लगे कि साक्षात मूर्तिमान कामदेव उपस्थित हैं दो रूप में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यह श्रृंगार भाव वाली उज्ज्वल भाव वाली स्त्रियों को ऐसा दिखाई पड़ा, ये दोनों साक्षात कामदेव अर्थात अति सुंदर अति सुंदर, अति विदग्ध और अति रसिक दोनों भाई प्रवेश किए। उनको विकरालता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण तो विकराल थे नहीं, बहुत सुंदर। मल्ला नाम असली निर्णाम नरवरव, त्रिनाम स्मरो मूर्तिमान, और कैसे है गोपा नाम स्वजन, और जो श्री कृष्ण के अपने गोप थे, उस गोप गए थे अपनी भेंट लेकर के नंद बाबा के साथ ब्रजवासी, जो पहले ही सभा में जाकर के सीट ले लिए थे, बैठ गए थे। कृष्ण ने कहा था कि मैं मथुरा घूम करके आऊंगा, आप लोग चलिए, नहीं सवेरे नित्य क्रिया करके। कृष्ण बलराम ने कहा कि हमको तो कहीं ना कहीं सीट दे ही देंगे लोग, आप लोग जाकर के सीट ले लीजिए। गोप लोग पहले जाकर के उस गैलरी में बैठे थे, स्टेडियम में बैठे थे। उन लोगों ने भी देखा कृष्ण बलराम को, तो स्वजन उनको श्री कृष्ण और बलराम अपने बिल्कुल सखा के रूप में या पुत्र के रूप में नंद बाबा जी को पुत्र के रूप में, ठीक जैसे कृष्ण है वास्तव में वैसे दिखाई दे। स्वजन गोपाल नाम स्वजनों, अस्तांग विराट, अस्तांग छिटी भुजा, जो दुष्ट राजा उसमें आकर के बैठे थे, अस्तांग छिटी भुजा पृथ्वी को भोगते हैं राजा, जो क्षिति भूज भूख कहते हैं, ये जो आए थे, अष्टम का अर्थ है कि जितने भी कंस के फ्रेंड्स जुटे थे राजा लोग, कंस बहुत बलवान था तो उसके अधीन कई राजा जुटे थे उस अवसर पर। फेस्टिवल क्या था, दिखाने के लिए धनुष यज्ञ था, पर फेस्टिवल का उद्देश्य था कृष्ण बलराम को मारना। उस सभा में ये असत, ये दुष्ट लोग जुटे हुए, असतम क्षिति भुजाम शास्त्र, जब इन असत राजाओं ने देखा कृष्ण बलराम को, उन्हें ऐसा लगा कि राजाओं का भी राजा, राजाओं को दंड देने वाला शासक आ गए, उनको ऐसे दिखाई पड़ा, यह तो निश्चित हमारा वध करेंगे दोनों। राजाओं को ये भय समा गया, शास्ता, शास्ता का अर्थ शासक, दंडदाता, विकराल उनको दिखाई दिए कि दंड देने के लिए आ गए, यही इसी रूप में उनको दिखाई गए थे शास्ता और स्वपित्र शिष्य, और उसे सभा में नंद बाबा आदि और वसुदेव जी के साथी कुछ बैठे थे, ये स्वपित्र, ऐसा लगता है कि उस सभा में श्री वसुदेव और देवकी को भी बैठाया गया था कुछ काल के लिए, जेल से ला करके और बैठाया गया देखने के लिए सृष्टि में, तो अपने माता पिता को बिल्कुल अपने शिशु के रूप में देने दिखाएंगे, वैसे किशोरावस्था कुछ नहीं दिखाई दे, बिल्कुल शिशु छोटे बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे, तो जो बिल्कुल स्नेह के पात्र हैं इस तरह से दिखाई दे। सुपित्रो शिशु मृत्युर भोज पते, भोजपति कंस को ऐसे दोनों भाई दिखाई दे, साक्षात मृत्यु उपस्थित, भयावह रूप में दिखाई दे दोनों, यही देखा कि हमारी मृत्यु साक्षात मूर्तिमान होकर दो रूप में आई, विराट अविदुषण, और जो अविदुष हैं भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, और न तो वे दुष्ट हैं और न तो स्नेह है कोई भाव है, और सबसे भिन्न है, उन लोगों को श्री कृष्ण ऐसे विराट रूप में दिखाई दे, विराट, विराट का यहाँ अर्थ बहुत विराट स्वरूप नहीं है, विराट जो राज्य नहीं, बिल्कुल गलत बेढंगा दिखाई दे, जो वहाँ अविदुष्ट कृष्ण के तत्व से नहीं जानते थे, वास्तव में जुगुप्सा बस घृणा, घृणा है कि अरे ये नालायक हड्डी उठा करके सभा में घूम रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई सभ्यता नहीं, अब विदुषण जो कृष्ण तत्व के ज्ञाता नहीं थे, कोई कोई तो ऐसे कहा है निकालो बाहर निकालना थे, कैसे सभा में आ गए, हड्डी लेकर के घूम रहा है वक्त शरीर पर लगा हुआ, तो अब विदुषण उनको विराट, विराट राट के विराजने के विपरीत शब्द है विराट, उनको अच्छा नहीं लगा, बेढंगा लगे दोनों, मृत्यु भोज करते विराट अभिदूषण तत्वम परम योगिना, और जो योगी हैं, योगी जन उस सभा में बैठे थे जो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनको परम तत्व के रूप में जाने जाए दिखाई दिए, कृष्णा किमिति परम तत्व हम न जाने, समस्त वेदों का या सृष्टि का सबका सार परम तत्व, वृषलीनाम पर देव तेति विदित रंगम गतो साग्रज। और जो विष्णुवंशी जादव विशेष बैठे थे वहां, वो देखे कि हमारे इष्ट देव हमारे परम प्रियतम प्रभु प्रवेश किए, विद्यास्य भाव के भक्त थे जादव, ये सब देख रहे हैं कि हमारे प्रभु पर देवता इष्ट देव प्रवेश किए। इस तरह से रंगम गतः साग्रज अपने अग्रज के साथ श्री कृष्ण रंग भूमि में प्रवेश किए। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों के अनुसार दिखाई दिए भिन्न भिन्न प्रकार से, और श्री कृष्ण है एक ही। इस प्रकार श्री गोपियों के लिए श्री कृष्ण परम मनोहर श्याम सुंदर हैं, पर श्री कृष्ण की अनेक विशेषताओं को, उनके ऐश्वर्य को, कृपालुता आदि को सुनती थी, और इस समय विरह के समय उसी की स्फुरणा हो रही है, महिमा स्मरण आ रही है कि प्रियतम श्याम सुंदर हमको अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार किए, ये इनकी महानता है। उसी को कह रहे हैं कि आप तो साक्षात ईश्वर है, ये है वो है। तो फिर भगवान कहें कि तब हमारे प्रति इस तरह की कटुक्ति क्यों बोली कि आप हमारा वध किए हैं, ये किए हैं। गोपियां कहती हैं सख्य है, आप ही तो हमें सख्य रस सिंधु में निमज्जित किए हैं, आप ही कृपा करके हमको अपनी प्रिया माने, हमारे साथ सख्य किए। हे सखे, हमारे द्वारा कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो, हमने कुछ भी गलत बोला हो कि आप स्त्री वध करती हैं, आप विश्वासघाती हैं, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हे प्रियतम, आप शीघ्र प्रकट हो जाइए। इस प्रकार इस प्रार्थना का यह सार है। पर इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा व्यक्त हो रही है। आज के युग में ऐसे श्लोक की ही व्याख्या करनी चाहिए, श्री कृष्ण वास्तव में श्री भगवान हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए हैं। सबसे बड़े व्यक्ति ने जब अपील किया बार बार और अन्य समस्त बड़े लोगों के साथ मिल करके, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और इस संसार में मान लीजिए आज जिसका जन्म हो रहा है, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पद का हो जाए, क्या उसके जन्म के पहले किसी ने प्रार्थना किया था और पता था कि ये कहाँ है, कौन जन्म लेगा, कित रूप में आएगा? कितने लोग तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत मंत्र तंत्र क्या क्या जो साधुओं के पास जाते हैं, पर कोई पुत्र होता ही नहीं है। और होता भी है तो क्या चुनाव करते हैं कि नहीं पहले वो अच्छा आदमी रहा होगा, वही हमारा बेटा बने? कोई भी आ जाए किसी समाज में, कोई धर्म वाला बेटा तो हो जाए, है ना? ये इतनी ही कामना होती है। कौन जीव बेटा बन करके आएगा कुछ पता नहीं रहता है, कि पहले लाखों गायों को खा करके अपना पेट भरा है, वो बेटा बनेगा कि क्या बनेगा कुछ पता नहीं रहता। किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जब जन्म ले लिया और संजोग से कहीं सफलता मिल गई, कोई नेता बन गया या गुरु बन गया, तो भगवान चालू हो गया, उसी दिन चालू हो गया। पहले तो देखिए क्या था, पहले इस समय तो भगवान बना हुआ है, पहले क्या था किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं पहले क्या था और आगे क्या होगा यह भी पता नहीं है। मतलब शरीर छोड़ने के बाद क्या रहेगा यह भी पता नहीं। श्री कृष्ण अनादि काल से ईश्वर हैं, संप्रति भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे अनंत काल के लिए। यह है भगवान की भगवत्ता। और उनके अपने स्वजन जो इस तरह से प्रेम रस में बंधे हुए हैं, उनको बिल्कुल अपना मानते हैं, फिर भी उनके मुख से उनकी महिमा व्यक्त होती रहती है। श्री कृष्ण सच्चा परमात्मा है और बहुत बड़ा काम करने के लिए दूसरे का उपकार करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जन्म लिया। ये सामान्य बात नहीं है कि ब्रह्मा जी जिससे प्रार्थना करें कि अवतार लीजिए और वही पूरे विश्व की रक्षा करें। आज तो सारा संसार विनाश के स्तर पर आ चुका है अनेक प्रकार से, लेकिन लोगों को पता नहीं कौन इस विश्व की रक्षा करेगा। इस बात का पता श्री ब्रह्मा जी को है, देवताओं को है कि श्री कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति से रक्षा हो सकती है सारे संसार की। और भक्ति मतलब नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बाद श्री गोपियां भगवान से ये कहती हैं कि हे प्रियतम, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप साक्षात भगवान हैं, परम समर्थ हैं, परम दयालु हैं, समस्त जीवों के अपने हैं, आप सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए हे प्रियतम हमारी केवल चार प्रार्थना है, उसको पूरा कीजिए। केवल आपके चरणों में हम चार प्रार्थना करती हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि तस्मात् तद्भक्तानां अस्माकं एतत् प्रार्थना चतुष्टयं संपादय इत्याह। हे श्री कृष्ण, हे प्रियतर, हम आपकी दासी हैं, आपके भक्त हैं, हमारी इस चार प्रार्थना को आप पूरा कीजिए। और कोई बहुत कठिन प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं। चार प्रार्थना क्या है गोपियों की, यही गोपी गीत का सार है। पहले तो आप अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रखिए, पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना है कि आप अपना बदन सरोर हो, अपना मुख हमें दिखाइए सुंदर मुख। और तीसरी प्रार्थना है कि आप अपने पद पंकज को, चरण कमल को हमारे कुचों पर, स्तनों पर रखिए, हमें हृदय पर रखिए, उनसे सहलाना चाहते हैं। चौथी प्रार्थना है कि हे प्रियतम, आप अपना अधरामृत दे करके हमें जीवित कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। चार प्रार्थना है। चारों प्रार्थना में सार यही है कि आप हमारे पास आ जाइए, आप वन में भ्रमण मत कीजिए, आपके चरणों में बहुत दुख हो रहा है। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तावत एक प्रार्थना चतुष्टयम् संपादय। चार प्रार्थना है। इस चार प्रार्थना को हम लोग अभी गाएंगे, जैसे गोपी ने गाया है। इसके बाद व्याख्या की जाएगी पहले श्लोक, पहले प्रार्थना। तस्मात् स्वभक्तानां अस्माकं एतत् प्रार्थना चतुष्टयं संपादय इति आहु विरचिता भयम् इत्यादि चतुर्विध। चार श्लोकों में श्री गोपीगण चार प्रार्थना व्यक्त कर रही हैं। और प्रियतम श्याम सुंदर से कहते हैं कि हे प्रियतम, हमारी चार प्रार्थना को पूरी कीजिए, हमारी चार मांग है। आप हमसे प्रेम किए हैं, बहुत मांग किए हैं, इसीलिए हम इसको मांग रहे हैं। संबोधन करती हैं छठे पांचवें श्लोक में। हे वृष्णि धूर्ज, हे वृष्णि विशेष ब्रजराज कुल तिलक। ब्रजराज श्री नंद बाबा, नंद महाराज एक वृष्णि विशेष हैं, उनके कुल के आप तिलक हैं, उसको आपने धारण किया है, अर्थात वंश का नाम बढ़ाने वाले। जदकुल नल में दिनेश जय जय देव है। हे निज कुल कमल प्रभाकर, हे कांत, हे प्रिय, संसृते संसारात भयात ते तव चरणम ईशान शरणम प्राप्तानां प्राणिनां विरचिता भयम् विरचितम् दत्तम् अभयम् तत् कामदम् अभीष्टदम् श्री कर ग्रहण श्रिय है, लक्ष्म्या करम गृहणाती इति तथा तत् एवं भूतम तव कर सरोरुहम कर कमलम नह अस्माकम शिरसि धेहि अर्पय। बहुत स्पष्ट है इसका अन्वय। हे वृष्णि ध्वज, हे वृष्णि वंश कुलतिलक, हे कांत, हे परम प्रियतम, संस्कृति के भय से, जन्म मरण रूप दुख परंपरा के भय से जो आपके चरणों की शरण लेते हैं, उन शरणागत प्राणियों के दुख का विनाश कर देते हैं। विरचिता भयम, विरचितम का दत्तम, आपकी चरण शरण में जो जीव आते हैं तो उन्हें आप सदा के लिए अभय दान देते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, अर्थात मुक्ति देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले। आपका कर कमल ऐसा है, आपके चरणों की शरण में जो लोग आते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों से, अपने हाथ से कर कमल की विशेषता बता रही हैं कि आपके हस्त उसे अभय दान देते हैं, जन्म मृत्यु के दुख से बचा लेते हैं। तो जब जन्म मृत्यु के दुख से बचा लेते हैं शरणागत को, तो अपनी प्रियाओं के विरह दुख को समाप्त कर देना तो आपके लिए बिल्कुल सरल। जन्म मरण के दुख को मिटा देते हैं तो विरह दुख को खत्म करना कौन बड़ी बात, तो सामान्य दुख। तो आपका ऐसा कर कमल, कर कमल की दो विशेषता बता रहे हैं, एक तो विरचिता भयम और दूसरा कामदम। हे प्रियतम, आपका कर कमल ऐसा है, कर कमल से तात्पर्य पूरा श्री कृष्ण समझना चाहिए हमेशा, परंतु फिर भी अंग विशेष गुण गा रहे हैं। संस्कृतेर भयात तौ चरण मीयुषाम विरचिता भयम कामदम, जीवों के प्राणियों के सर्वविध अभीष्ट को पूरा करने वाले सरकार। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि विरचिता भयम संस्कृतेर भया चरण ईशान विरचिता भयम, इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल की विशेषता बताई जा रही है। उसे कहा जा रहा है मोक्ष प्रदत्तम अहु। संसार में जितने भी जीव हैं जो दुख में पड़े हैं, जन्म मृत्यु में, रोग दुख शोक में पड़े हैं, इसमें से कोई भाग्यशाली जीव यदि कृष्ण की शरण में आते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें सदा के लिए जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त कर देते हैं। इसमें भगवान के हस्त कमल में के मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया। चार पुरुषार्थ हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है अंतिम, मुक्त कर देते हैं। इसमें अपने आप सन्निहित है कि भगवान अपना धाम दे देते हैं, यहाँ के दुख से मुक्त करते हैं। एक में दुख से मुक्ति का वर्णन है और एक में कामदम, जो कुछ भी जीव का अभिक्षित अर्थ है, परम प्रेम, कृष्ण प्रेम या श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति, उसको देते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि एक विशेषता के द्वारा मोक्ष प्रदत्तम कहा गया है और दूसरी विशेषता के द्वारा त्रिवर्ग दत्तम, धर्म अर्थ काम। श्री कृष्ण सब कुछ के दाता है और विशेष करके मोक्ष देना, मुक्ति देना, संसार के दुख से मुक्त करके अपने नित्य धाम में बुला लेना, यह कार्य कोई दूसरा देवता नहीं कर सकता है। महाराज मुचकुंद के प्रसंग में बात सिद्ध है। देवताओं ने स्पष्ट कहा महाराज मुचकुंद से कि महाराज हम आपको स्वर्ग की कुछ संपत्तियां दे सकते हैं, आपकी आयु की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन सॉरी महाराज, हम आपको वैकुंठ नहीं दे सकते। यह अधिकार केवल भगवान विष्णु को है। इसको जन्म मृत्यु से मुक्त करना यह केवल भगवान विष्णु के हाथ में है और कोई नहीं कर सकता। कोई देवता यहां तक भगवान शिव ब्रह्मा जी ये सब नहीं कर पाएंगे। इस संसार का वो भोग दे देंगे, वो फैसिलिटी दे देंगे हमें, जैसे रावण को दिए शिव जी, ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को दिए, माता दुर्गा जी कंस को दी, खूब फैसिलिटी। लेकिन अज्ञान से जन्म मरण से मुक्त नहीं करता है। जन्म मरण से कौन मुक्त करता है? भगवान। यहां तक कि शत्रु भाव से जो भगवान की याद करते हैं उनको भी मार करके ये शरीर बंधन खत्म करके अपने धाम में भेज देते हैं। संस्कृतिर भयात, और कोई संस्कृति के डर से, भय से, जन्म मृत्यु के भय से श्री कृष्ण की शरण ले, उसे तो भगवान का हस्त कमल सदा के लिए वैकुंठ दे देते। हम तो संस्कृति के भय से आपका भजन नहीं कर रही हैं, ये प्रियतम हम तो बड़े प्रेम से आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमको कोई संस्कृति का भय नहीं। अगर संस्कृति का भय है तो हमारे लिए संसार क्या है? संस्कृति और संसार दोनों एक बात है। हमारे लिए संसार भय है, हमारे पति, हमारे ससुर, हमारी सास या स्वजन आदि जो आपके मिलने में बाधा देते हैं, यही हमारे लिए संसार है, बहुत भारी बंधन है। लेकिन हमने अनुभव किया है, गोपियां कह रही हैं, जब से आपके हस्त कमल का संस्पर्श हमको मिला है, तब से उस संस्पर्श के प्रभाव से जब हमारा संसार भय चला गया, इसकी चिंता नहीं है। उस शरणागत भाव से जब हम आपके चरणों के शरण में आए, हमने आपको देखा, आपकी सेवा किया, तो हमारा संसार तो समाप्त है। गोपियों के लिए संसार यही है, और ऐसे परिवार को संसार कहते ही हैं। और संसार का खुलम खुला अर्थ है पत्नी, संसार, संस्कृति। किम जाए या संस्कृति, ऐसे कहते। एक बार संत से मैं मिलने गया, गौड़ीय संत करुण सिंधु बाबा जी महाराज, कृपा सिंधु भगवत पीठ में गया था, तो वे पूछे, पहली बार मैं ये शब्द सुने, संसार किया है कि नहीं? मैं तो जगह कुछ समझा नहीं, संसार किया है कि नहीं? वे स्वाभाविक गति से पूछ रहे थे, संसार किया है कि नहीं? मैं कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ कुछ पूछा नहीं, कुछ समझ नहीं आया कि संसार किया कि नहीं। उनके एक शिष्य थे, वो पूछ रहे, अरे विवाह किए कि नहीं? या नहीं नहीं मैं संसार नहीं किया। संसार संसार के संसार संसरती थी, संसार जो संसरती एक दशा में न रहे उसको संसार कहा गया। इस शरीर में एक दशा नहीं रहती है, कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, कुमारावस्था, जौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, अंत में भस्म अवस्था या जो भी विविध अवस्था है शरीर की जो भी होती है, इसको संसार कहते हैं। जीव इसमें दुखी हो रहा है, इस देह में असली संसार ये देह है, दूसरा संसार गेह है, देह गेह। जीव वास्तव में देह से और गेह से, घर से, दोनों से विलक्षण है, परंतु अपने स्वरूप को नहीं जानता है, भूला है, अपने प्रियतम भगवान को भूल चुका है। कृष्ण की याद करता है जीव, तब उसका संसार बंधन समाप्त हो जाता है, विसरण लेता है। ऐसे भी संसार में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की शरण लेता है तो शरण कहाँ लेता है, चरणम ईशान, चरण की शरण लेता है। परंतु उसका दुख कौन दूर करता है, चरण दुख दूर नहीं करता है, चरण तो समाचार भी नहीं पूछता है, चुपचाप प्रणाम कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, वैसे चुप चरण कुछ नहीं करता है। शरण लिया है चरण की, पर उसका दुख कौन मिटाता है, हाथ, हाथ से आदमी उसको सहलाता है, आशीर्वाद देता है या वचन से कुछ कहता है, कुछ देना हो, खिलाना पिलाना, उसको पंखा झेलना या कुछ भी करना, उसको सुखी करना, उसकी रक्षा करना, पैर आकर के रक्षा नहीं करता है, हाथ रक्षा करता है, किसी आघात से रक्षा भी करता है विपत्ति से, और उसके इच्छा के अनुसार वो देता भी है, उसे कामदम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कर सरोरुह ऐसा है जो संस्कृति के भय से चरण में आए हुए शरणागत जीवों की रक्षा करता है, संस्कृति भय से दूर कर देता है, मुक्त कर देता है, और कामदम सब प्रकार के अपेक्षित और अभीष्ट वस्तुओं को देता है। जीव का सबसे अभीष्ट पदार्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण से मिलन, कृष्ण की सेवा की प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति। जीव कृष्ण के साथ हो जाए और कृष्ण की सेवा करे, जीव का परम पुरुषार्थ यही, इसको काम कहते हैं, काम दम, काम को देता है हस्तकम। श्री कृष्ण जीव के सब प्रकार के मनोरथ को पूरा कर देते हैं और इसके आगंतुक के दुख को हर लेते हैं, जन्म मृत्यु का दुख हर लेते हैं, और जन्म मृत्यु के बीच में जो भी दुख है, दरिद्रता, रोग आदि सब कुछ हर लेते हैं, नित्य जीवन देते हैं, शाश्वत जीवन देते हैं। तो हे प्रभु, हे प्रियतम, हे कांत, आप अपने ऐसे कर कमल को न अस्माकम शिरसी धेहि, केवल एतावत हमारी प्रार्थना है, इतनी ही प्रार्थना है, और ज्यादा प्रार्थना नहीं है, आपके हाथ से हम और नहीं मांग रहे हैं, हस्त कमल को ही मांग रहे हैं कि आप हमारे सिर पर रख दीजिए। ये प्रियतम, आप यदि अपने कर सरोरी हमारे सिर पर रख देंगे, हम शीतल हो जाएंगे, हम जल रही हैं, हम मर रहे हैं, हमें बहुत दुख है। आप प्रकट होकर के यहाँ आ करके यदि अपने कर सरोरी हमारे सिर पर रख देंगे तो हमारी जलन मिट जाएगी। और एक तीसरी विशेषता हस्तकमल की बताई है, श्री करग्रहम, श्री करग्रहम, श्रीया श्री जी का, लक्ष्म्या लक्ष्मी जी का, करम ग्रहणाति इति तथा तत्व, आपने श्री का कर ग्रहण किया है, इसका अर्थ है कि हे प्रियतम, आप इतने महान हैं, आप इतने सौभाग्यवान हैं, महान हैं सब तरह से, कि लक्ष्मी जी आपकी गृहिणी हैं, पत्नी हैं, उनके साथ आपने पाणी ग्रहण किया है। तो हमारा तो ये दुस्साहस नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ पाणी ग्रहण करें, हम आपके योग्य नहीं हैं, जबकि लक्ष्मी से ही कोटि गुना भाग्यवती और योग्य गोपियां हैं, लेकिन दैन्य बस कह रही हैं, श्री कर ग्रहण, आपने श्री का कर ग्रहण किया है, श्री के साथ पाणी ग्रहण किया है, विवाह है तो पाणी ग्रहण ही मुख्य चीज है ना, अपने पाणी से श्री का पाणी पकड़ना कुछ मंत्रों के साथ, जो पाणी ग्रहण संस्कार का ये संस्कार है, संस्कार इसलिए इसको कहते हैं कि एक स्त्री का जब पाणी ग्रहण किए, हाथ पकड़े, उसके अलावा संसार की सारी स्त्रियां या तो पुत्री हुई या माँ हो गई, किसी के साथ कोई प्रकार का दूषित विचार नहीं, व्यवहार नहीं, इसको संस्कार कहा गया। और वास्तव में अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना, इसको धर्म कहा गया है। गीता में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, हे भरत ऋषभ अर्जुन, भूतेषु जो प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध काम है, काम वासना है, वो मेरा स्वरूप, मैं काम हूँ, मैं काम वासना के रूप में हूँ, यदि वह धर्म के अविरुद्ध है, अनुकूल है। इसका अर्थ है कि अपनी पत्नी से कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए संबंध रख रहा है और उसमें काम आ रहा है केवल पुत्र प्राप्ति के लिए, और उचित देश में, उचित काल में, उचित परिस्थिति में वह पत्नी के साथ संग करना चाहता है, वह धर्म के अनुकूल वह संग है, तो साक्षात मैं हूं, इतना पवित्र संबंध है, मैं खोल करके कहना भगवान के लिए वह मेरा स्वरूप है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में ये बात कही गई है कि विवाह एक संस्कार है, जीव को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है, वह एक धारा में हो जाए नियोजित ढंग से और वह भगवत पथ पर चले, भगवान की भक्ति करे चले, लेकिन अपने अधिकार के अनुसार अपने ट्रैक पर चले, ये संस्कार है। स्त्री के साथ है भगवान ने पाणी ग्रहण संबंध किया, तो स्त्री जी इस विश्व की सबसे श्रेष्ठ महिला है, केवल इस प्राकृतिक जगत में नहीं अप्राकृतिक जगत में भी स्त्री जी सबसे श्रेष्ठ है। इस सबसे महान महिमा वाली स्त्री जिसकी पत्नी है, वह व्यक्ति कितना महान होगा कि स्त्री जी उसको अपने पति के रूप में बनाई, श्री जी ने सबका तिरस्कार करके सबको छाट करके भगवान को अपना पति बनाया है। यह अभी अभी कथा जमुना नगर में कहने का अवसर मुझे मिला था, श्री जी का विवाह समुद्र मंथन, किस तरह से वे भूत भविष्य वर्तमान में हुए बड़े बड़े लोगों में दोष निकाल रहे हैं, बिल्कुल निर्दोष और सर्व सद्गुण मंडित केवल विष्णु, तो उनके गले में वरमाला डाला श्री जी ने, श्री भगवान ने उनके साथ विवाह किया उनका कल्प। हे प्रियतम, हे काम, उसी कर सरोरुह को न हसीरसी धेहि, न बहुवचन में है न अस्माकम न तो मम, एक वचन में नहीं, अस्माकम बहुवचन में, हमारे मस्तक पर रखिए देह और सिरस सिर एक वचन में है, तो बहुवचन में कह रहे अपने को तो सिर एक वचन क्यों कही। गोपियों ने ये सोचा कि प्रियतम यदि इतनी गोपियों के सिर पर हाथ बारी बारी से रखेंगे तो उनको बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, तो वो कह रहे हैं कि यदि हम लोगों में से प्रधान श्री वृषभानु नंदिनी के मस्तक पर आप हाथ रख देंगे तो हम मान लेंगे कि हम सबको आपने स्वीकार किया, हम इतने से प्रसन्न हो जाएंगे। वो सिरसी एक वचन है, यह भगवान ने मानो कहा है ठीक है मैं रखूंगा, लेकिन मैं केवल एक बार रखूंगा, इतना मैं क्या बारी बारी से सकता हूँ, फिर थक जाऊंगा। सिरे सिद्धे ही विष्णु चक्रवर्ती का जी बहुत रसिक भाव से बोलते हैं कि क्यों सिर पर रखें, आपके बक्षस्थ पर रखने की मेरे हाथों में भी भिक्षा रहती, इच्छा रहती है रखने, आपके कुछ पर आपके अस्तन पर ही रखूंगा, इसमें क्या हर्ज है। तो कहते नहीं, आप हमारे बक्षस्थल को नहीं रख सकते क्योंकि श्री कर ग्रह, आपके कर को श्री जी ने पकड़ा है, आप जब श्री के बक्षस्थल पर अपना हाथ रखना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ से श्री ने आपका हाथ पकड़कर वर्जित किया, श्री कर ग्रह, श्री ने आपके कर को पकड़ा है। यहां से श्री से तात्पर्य यदि राधा रानी को इस श्लोक से बाधित करेंगे, बाध करेंगे, तो श्री का अर्थ राधा रानी हुआ है, उन्हीं को श्री कहते हैं, श्री जी मंदिर, श्री जी परसाने में रहते हैं, श्री श्री श्री, तो श्री का अर्थ राधा रानी ही हुआ, श्री राधा रानी श्री कृष्ण के कर कमल को पकड़ी है। मना करते हैं, मान करते हैं, हमें मत छुओ, ये मत छुओ। तो इस प्रकार का अर्थ लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। श्री कर ग्रहण, श्री ने जिनके हाथ को ग्रहण किया पकड़ लिया, लेकिन प्रसंग के अनुसार यही अर्थ समीचीन है कि श्री जी जैसी महान स्त्री का आपने पाणी ग्रहण किया है, वह आपकी गृहिणी है, हम तो आपकी दासी हैं। हे प्रियतम, आप हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख दीजिए, इससे हम निहाल हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। हमारी ये पहली प्रार्थना, हस्त निधान की प्रार्थना भी उनको लगा कि श्री कृष्ण पूरा नहीं करेंगे। वो कहते ठीक है, आप अपना मुख दिखा दीजिए हमको। जल रुहाननम चारु दर्श, फिर कहते आप अपने चरण कमल को हमारे स्तंभ पर रखिए और आप मधुर वाणी हमको पिलाइए, हमारे साथ बात कीजिए और आप अपने अधरामृत से हमको तृप्त कीजिए। ये चारों मांग है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते तो इसको कीजिए, इसको नहीं कर सकते तो इसको, ऐसी बात नहीं, चारों मांग है। और समस्त गोपी गीत का यही सार चीज है और सबने तत्सुखित्व की भावना है, कृष्ण को ही सुखी करने की भावना है इन श्लोकों में, इन उक्तियों में, और बहुत मधुर है। हम लोगों का तो इतना ही बहुत बड़ा भाग है कि हम लोगों को गाने को मिलता है, कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसका बारंबार मनन करना चाहिए। भक्तों का आपस में भी इसी की व्याख्या और विचार करते रहना चाहिए, इसको मनन कहते हैं। कथा के बाद दूसरी वार्ता नहीं, दूसरा विचार नहीं, कथा में आए हुए प्रसंग कहीं बार बार चरवण करने, अनुचरवण मनन, तब भगवत के रस का आस्वादन होता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।